करता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो सबको एक सा प्यार करता है, पर हमारा फर्ज है कि हम उस पर विश्वास करें।
ऐसा प्यार किया ईश्वर ने जगत से, जो कोई उस पर विश्वास जावे, जो कोई उस पर विश्वास जावे, ना जाओ परंतु आनंद जीवन पावे, ना जाओ परंतु आनंद जीवन पावे, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया ईश्वर ने जगत से।
बच्चों, इस कोरस के शब्द कितने सच्चे हैं। बाइबल में ये भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बच्चों, कितना अच्छा हो यदि आज ही तुम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप कर उस पर पूरी रीति से भरोसा रखो। किसी गडरिये के पास 100 भेड़ें थीं। वो उन्हें रोज हरी हरी घास चराया करता था। जब वे प्यासी होती थीं, तो उन्हें नदी के साफ पानी के पास ले जाता था। गडरिये के रहते हुए भेड़ों को ना किसी बात की कमी भी न डर था। गडरिया हाथ में लाठी लेकर चलता था ताकि अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों से बचावे। वो उनको प्यार करता था और एक एक का नाम लेकर पुकारता था। भेड़ें चैन से रहती थीं और उनको कोई हानि ना होती थी। एक दिन शाम को जब गड़रिया भेड़ों को घर लाया तो उसने जाना कि एक भेड़ कम है। उसने उनको गिना, 1, 2, 3, 4 खाने केवल 99 निकली। वो सोच में पड़ गया कि एक भेड़ कहाँ गई। अंधेरी रात में वो भेड़ को ढूंढने चल दिया। आकाश में बादल छा गए थे, आंधी चल रही थी और हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी। जंगल में बहुत दूर जाने के बाद उसको एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वो ठिटक कर खड़ा हो गया और सुनने लगा। फिर आवाज आई, तब गड़रिये ने पहचाना कि ये उसी की भेड़ की आवाज है वो आवाज की ओर जल्दी से दौड़ने लगा। अंत में उसने अपनी भेड़ झाड़ियों के बीच में फंसी हुई पाई। भेड़ के बाल कांटों से उलझे हुए थे, कांटों ने उसके पीठ पर घाव कर दिए थे। वो अपने आप से नहीं छूट सकती थी। वो भूखी और प्यासी थी क्योंकि उसे चारा और पानी कुछ नहीं मिला था। जब भेड़ ने गड़रिये को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने एक बार फिर आवाज दी। गड़रिये ने झटपट उसे कांटों में से निकाला और उसके घावों पर तेल लगाया। फिर उसे कंधे पर उठाकर खुशी खुशी घर ले गया। घर में पहुंचकर उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहा, आओ मेरे साथ खुशी मनाओ, मेरी भेड़ मिल गई है। बच्चों, हमारा भी एक अच्छा गड़रिया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम उसकी भेड़ें हैं। वो हमें भयानक भेड़िये के पंजे से बचा सकता है। ये भयानक भेड़िया कौन है? वो शैतान है। परमेश्वर का वचन है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं और हमने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। हम पाप के जंगल में खो गए हैं और परमेश्वर के घर का रास्ता नहीं जानते। परंतु हमारा अच्छा गड़रिया यीशु हमें ढूंढने के लिए स्वर्ग से आया। वो खोए हुओं को बचाने आया। हमें ढूंढने और बचाने के लिए उसने अपना खून बहाकर अपनी जान ले दी। वो हमारे पापों के लिए मरा और मरने के 3 दिन बाद कब्र में से जी उठा। अब वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहता है। यीशु हम सबों से बहुत प्रेम करता है और हमारा नाम भी जानता है। वो तुम्हें पुकार रहा है, क्या तुम उसकी पुकार का उत्तर दोगे जैसे कि उस खोई हुई छोटी भेड़ ने गड़रिये को उत्तर दिया? क्या यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दोगे? आज ही उसे ग्रहण करके उस पर भरोसा रखो। यीशु मसीह जो कि राजाओं का राजा है, संसार के प्रत्येक मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। प्यारे बच्चों, हमारा प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक अपने जीवन से पवित्र वचन की ज्योति दूसरों तक पहुँचाए।
Good night.
प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मान लेने से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तभी हम इस पापी संसार में मसीह के लिए तारों के समान चमक सकते हैं। क्या तुमने कभी नाव में बैठकर नदी को पार किया है? क्या तुमने कभी आंधी के समय नाव पर सवार होकर नदी पार की है? सुनो, हम तुम्हें एक नाव की कहानी सुनाते हैं जो नदी के बीच में पहुंचकर जोखिम में पड़ गई थी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो नदी के उस पार चलें। यीशु ने नाव में बैठकर बड़ी भीड़ को उपदेश दिया। उपदेश करने के बाद यीशु नाव के पिछले भाग में लेट गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। तेज हवा चलने लगी। अचानक उनमें से एक चेला बोल उठा, देखो आसमान पर काले बादल छा गए हैं, ऐसा मालूम होता है कि आंधी आने वाली है। उसके कहते कहते नदी पर आंधी आ गई। धीरे धीरे बादल भी गरजने लगे। छोटी नाव डगमगाने लगी। पानी की लहरें उठकर नाव से टक्कर मार रही थी। चेले डर गए। इतने उन्हें याद आया कि प्रभु यीशु नाव में सो रहा है। उन्होंने उसको जगाया, कहा, स्वामी स्वामी हम डूबे जाते हैं, हमें बचा, क्या तुझे कुछ फिक्र नहीं? यीशु धीरज के साथ उठा और बिल्कुल ना घबराया। उसको घबराने की कोई जरूरत भी ना थी क्योंकि उसी के हाथों से सब चीजें बनाई गई हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आंधी और पानी को डांटा और चिल्लाकर आज्ञा दी, ठहरो, शांत हो जाओ। तुरंत आंधी थम गई और लहरों का उठना रुक गया। नदी पर शांति छा गई और उसकी नाव आगे को बढ़ने लगी। यीशु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते थे? तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं रखा? चेले यही सांग देखकर हैरान हो गए। आपस में भी कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी पर भी अधिकार दिखाता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं? जरूर यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब हम सलामती से नदी के पार पहुंचेंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें मौत के समुद्र से बचाने के लिए आया। यदि प्रभु यीशु मसीह उस समय आंधी को ना रोकता तो सब लोग डूब जाते। इसी तरह बिना किसी सहायक के हमारी जीवन रूपी नाव भी पाप के समुद्र में डूब जाएगी। जब यीशु संसार में आया तो उसने पाप नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं लड़ी, कभी झूठ नहीं बोला, ना कभी चोरी की। जब वो इस जगत में आया तो निष्पाप था। शैतान ने उसको पाप करने के लिए बहुत बहकाया, पर यीशु के सामने उसकी एक न चली। यीशु बराबर परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलता रहा। उसको एक महान काम करना जरूरी था, उसको संसार के लोगों के लिए मरना था। जब मरा तो हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए। मरने के 3 दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब वो अपने स्वर्ग के भवन में है और हमारी राह देखता है। क्या तुम भी अपनी जीवन रूपी नाव उसके हाथ में ले दोगे ताकि वो तुम्हें पाप से बचाकर दूसरे किनारे पर सलामती से पहुंचा दे? वही अकेला उस पार का रास्ता जानता है। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
ईशु ने कहा, जाग और खा।
केवल यीशु मसीह ही एक मार्ग है। यदि हम उसके पीछे चलें, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा और हम परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचकर यीशु मसीह के साथ सदा राज्य करेंगे।
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काला गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काला गया, मेरे लिए सिद्धि उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए सिद्धि उठा मेरा है मसीह। मैं मसी का हूँ, हम मसी के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय।
हमें खुश होना भी चाहिए क्योंकि हमारे सब पाप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा हो जाते हैं और जब हम मरेंगे तब उसके साथ स्वर्ग में राज करेंगे।
एक लाना है, लाना है, और एक और गाना है, सपना का नए साल खतों का, यीशु मेरा प्रकाश, मेरे जीवन की आँख हो है बल, मेरी आत्मा का है भरोसा, वही मुक्ति दाता, वही उसकी आज्ञा को मानी माला, यीशु मेरा प्रकाश, मेरे जीवन की आँख हो है बल, मेरी आत्मा का।
बच्चों, यीशु ने मेरे और तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा ताकि हम अनंत जीवन पाएं। क्या तुम आज अपना छोटा जीवन उस प्रभु को देने के लिए तैयार हो जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया?
मामा, कुछ दिन हुए हम लोग शादी के भोज में गए थे, क्या आप मुझे एक शादी की कहानी सुनाएंगी?
हाँ बेटी, ये कहानी जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ यीशु मसीह ने सुनाई, ये बाइबल में लिखी है। किसी राजा का एक बेटा था। राजा ने बेटे की शादी का प्रबंध करके एक बड़ा भोज किया जिसमें बहुत से लोगों को बुलवाया। देखो, राजा के बेटे की शादी में बुलाया जाना कैसी सब की बात है। शादी की तैयारी बहुत दिन पहले से बड़ी धूमधाम के साथ की गई। तरह तरह के मजेदार खाने बड़ी तादाद में बनाए गए। जब सब कुछ तैयार हो गया, राजा ने नौकरों से कहा मेहमानों को बुलाओ, पर लोगों ने राजा के न्योते पर ध्यान नहीं दिया। कोई खेत पर काम करने चला गया, कोई बाजार में लेन देन करने को, बाकी लोगों ने राजा के नौकरों को पीटा और मार डाला। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, उसने उन दुष्टों को सजा दी। फिर राजा ने दूसरे नौकरों से कहा जो भोज में बुलाए गए थे वे इस लायक नहीं निकले, इसलिए गलियों और सड़कों पर जितने लोग मिले सबको मेरे भोज में बुला लाओ। नौकर सड़कों पर जल्दी जल्दी गए, गली गली घूमकर जितने मिले सबको इकट्ठा करके लाए। इस प्रकार राजा का महल लोगों से भर गया। हरेक मेहमान को पहनने के लिए शादी के कपड़े मुफ्त दिए गए। जब राजा पाहुनों से मिलने आया तो उसने एक ऐसा मनुष्य देखा जो शादी के कपड़े नहीं पहने था। राजा ने उससे पूछा, तुम शादी के कपड़े पहने बिना कैसे आए? उस मनुष्य ने कोई जवाब ना दिया, भला वो बहाना भी क्या करता। राजा ने नौकरों से कहा इस मनुष्य को बाहर निकाल दो। नौकरों ने तुरंत उसे निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। बाकी मेहमानों ने राजा का मजेदार भोजन खूब खाया और आनंद मनाया। जैसे राजा ने मेहमानों को बुलाया वैसे ही परमेश्वर सब पापियों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति पाने के लिए बुलाता है। शादी के कपड़े बिना दाम के दिए गए, इसी प्रकार मुक्ति भी मुफ्त मिलती है, भले कामों के द्वारा नहीं। प्रभु यीशु ने अपने बलिदान का खून बहाकर हमारे लिए मुक्ति मोल ली। प्रभु यीशु निष्पाप था, इसलिए मरने के 3 दिन बाद वो जी उठा। वो फिर आसमान पर चढ़कर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब परमेश्वर सब लोगों को बुलाता है, तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह की नेकी के कपड़े पहनो। तुम किसके समान होना चाहती हो, उन लोगों के जो अपने अपने रास्ते पर चले गए?
नहीं नहीं, मैं उनके समान बनना चाहती हूँ जो शादी के भोज में गए।
देखो बेटी, बिना प्रभु यीशु मसीह के दया प्राप्त किए हुए परमेश्वर के सामने जाने का विचार कभी मत करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो नरक की आग में डाली जाओगी। नरक से छुटकारा नहीं मिल सकता।
मामा, नरक जाने से कैसे बच सकते हैं?
बेटी, सबसे पहले हमें अपने पापों को मान लेना पड़ेगा। इसके बाद हमें अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगनी पड़ती है, क्योंकि वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। उसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और उसके मर जाने से हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अभाज्य है, सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। बच्चों, आज हम तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। राम स्वरूप और किशनलाल सगे भाई थे। राम स्वरूप ढेर व मेहनती लड़का था। वो खेती करके दोनों के लिए पैसा कमाता था, लेकिन किशनलाल शराब पीने व जुआ खेलने में ही अपना समय नष्ट कर लेता था। एक दिन किशनलाल के दोस्त मोती ने उसके सब रुपए जीत लिए। नशे में गुस्सा होकर किशनलाल ने मोती को कपटी कहा और झपट कर उसकी छाती में छुरा भोंक दिया। मोती तुरंत मर गया और किशनलाल के कपड़े उसके खून से लथपथ हो गए। जब सिपाही आए तो उन्होंने वहां मोती की लाश को देखा। किशनलाल अपने भाई के पास गया। उसका भाई राम स्वरूप उसके कपड़े पहन लेता है ताकि खूनी को बचने का मौका मिल जाए। कपड़ों पर खून का दाग देखकर पुलिस वाले किशनलाल के बदले राम स्वरूप को हवालात में ले गए। मोती की हत्या के लिए किशनलाल के बदले राम स्वरूप को दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा दी गई। फांसी की सजा मिलने से पहले राम स्वरूप ने किशनलाल को ये चिट्ठी भेजी, प्यारे भाई, मैंने तुम्हारे बदले अपनी जान दे दी है। मेरी भलाई पर ध्यान दो और आगे चलकर अपना जीवन मेरी तरह से नेक चलन होकर बिताओ ताकि मेरा बलिदान सफल हो। तुम्हारा प्यारा भाई राम स्वरूप। प्रिय बच्चों, इस कहानी में तुमने प्रेम अपार देखा कि किस तरह राम स्वरूप ने अपने बच्चन भाई किशनलाल को बचाने के लिए खून की सजा जो मौत थी खुद उठा ली। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मौत है। बच्चों, हो सकता है कि तुमने कभी किसी की हत्या ना की हो, तो भी हम सब पापी हैं और नरक में जाने के हकदार हैं। लेकिन जिस तरह राम स्वरूप ने अपने बच्चन भाई किशनलाल को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, ठीक उसी तरह परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों को बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुमको नया जीवन मिलेगा, जैसा कि किशनलाल को मिला, और वो नया जीवन अनंत जीवन होगा। बच्चों, क्या कभी तुमने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी? क्या तुम मेरे साथ ये दुआ करोगे? प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी जन हूँ। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देना चाहता हूँ। मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन के द्वारा तुझे खुश कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जितने उसे ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं।
दिल मेरे में आ यीशु, आ ही तू आ और है सदा। दिल मेरे में आ यीशु।
सुनो बच्चों, आज मैं तुमको एक दृष्टांत बताऊंगी जो यीशु मसीह ने अपने समय में लोगों को बताया। दृष्टांत एक ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें संसार का उदाहरण देकर स्वर्ग बातों की चर्चा की जाती है। दृष्टांत ये है, एक बार दो मनुष्यों ने अपना अपना नया घर बनाना शुरू किया। पहला मनुष्य बुद्धिमान था, उसने मेहनत करके नींव बहुत गहरी खोदी। जब पक्की चट्टान मिल गई, बुद्धिमान उस पर नींव डालकर घर बनाने लगा। वो घर बहुत सुंदर और मजबूत बना। दूसरा मनुष्य उत्सुक था, वो सुंदर घर तो चाहता था पर मेहनत करना नहीं चाहता था। उसने नींव बहुत गहरी नहीं खोदी, वो बालू पर नींव रखकर घर बनाने लगा। वो घर सुंदर तो बना पर कमजोर था। कुछ महीनों के बाद बरसात आई, पानी बरसा, बादल गरजे और बिजली चमकी, फिर आंधी चली और नदियों में बाढ़ आई, पर उस बुद्धिमान मनुष्य के घर को कुछ नुकसान ना हुआ। उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी, इसलिए वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा। आंधी पानी का उसको कोई असर ना हुआ क्योंकि वो बड़ा मजबूत बना था। लेकिन उस मूर्ख के घर का क्या हाल हुआ? जब आंधी पानी की चक्कर लगी तो वो गिर पड़ा, क्योंकि उस घर की नींव बालू पर रखी गई थी, इसलिए वो तूफान का भाव ना संभाल सका और गिरकर नष्ट हो गया। तुम अपने जीवन का घर कैसी नींव पर बना रहे हो? सच्ची और पक्की नींव एक ही है, वो नींव प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिस पर हम सब मनुष्य अपने जीवन का घर बना सकते हैं। अब सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपने जीवन का घर उस सच्ची और पक्की नींव पर बनाएं। इसका एक ही उत्तर है, अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करने से हम उसकी पक्की नींव पर घर बना सकते हैं। हम अपनी सहायता अपने आप नहीं कर सकते, यीशु हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, लेकिन हमें उसके बलिदान के काम को ग्रहण करना चाहिए। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। यदि हम ऐसा करें तो हम उसकी सच्ची और पक्की नींव पर अपने जीवन का घर बनाएंगे। अभी तुम बच्चे हो और तुम्हारे जीवन का घर बनना शुरू होता है। अब तुमने जान लिया कि सच्ची नींव कौन है, इसलिए याद रखो कि यीशु ही पर अपना घर बनाओ और किसी दूसरे पर नहीं। परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानो, उससे विनती करो कि वो यीशु के लहू से तुम्हारे मन को धोकर शुद्ध और पवित्र करे। प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो। आज ही अपने जीवन का घर उसी पर बनाओ।
उठा।